कहां कहां फैल रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा ये जो वीकली प्रोग्राम जिसके अंदर 600 से 700 लोग जुड़ते हैं हर हफ्ते, परंतु अभी ये सब टेक्नोलॉजी के वजह से इतने लोग जुड़ रहे हैं कि मेरे इस विजिट में एक हमारे लंदन के केंद्र में वो परिचय दे रहे थे मेरा, और मुझे नहीं पता था कि वहां पर बहुत से जो हैं वो हमारे गीतामृत को रेगुलरली फॉलो करते हैं, ऑडियंस में बैठे हुए थे वो लोग। तो परिचय में वहां के जो होस्ट उस सेंटर के अध्यक्ष, उन्होंने परिचय में कहा, उन्होंने गीत याद किया, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उस गीत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु जी उस मंदिर के वासी हैं जिस मंदिर में गीतामृत बहती है। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनको क्या समझेगा गीतामृत। तो वहां पर फिर जब उन्होंने कहा कि ये गीतामृत कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो कुछ 25, 30, 50 तक लोग आते थे, अब 600 से 700 लोग आते हैं, तो वहां पर उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उनके जो हेड, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो आप केवल बता रहे हो कि नासिक में, भारत में जो वहां पर बैठते हैं सामने जो लाइव सुन रहे हैं हम लोग सब पूरा ग्रुप, वो और आप 150-200 ऐड कर दो उसमें, और हम लोग ज्यादा कमिटेड हैं। उन्होंने कहा हम लोग ज्यादा कमिटेड हैं क्योंकि वहां पर नासिक में जो गीतामृत अटेंड करते हैं उनको प्रसाद मिलता है। तो उनमें से ही एक नए आने वाले थे, वो मुझे पहले से जानते हैं। तो आपको याद है हमने वो कर्मा रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया था एक बार, तो उन्होंने पता नहीं हमारी जो क्लिप्स सर्कुलेट होते हैं उसमें से वो जो खिचड़ी का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि वही खिचड़ी लेकिन जब उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है तो फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो ये एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और इनको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो डिस्क्रिप्शन खिचड़ी का। तो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा, क्योंकि उन्होंने जो क्लिप देखा था उसके अंदर मैं इंग्लिश में बोल रहा था, जो भी वो 5-7 मिनट का जो क्लिप था उसमें मैं इंग्लिश में बोल रहा था। तो क्लिप में उन्होंने अपना पीछे का जो डोर्स है ऑल्टर डोर्स वो सब कुछ देखा, एप्पल का लैपटॉप दिख रहा था उनको, फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन। तो उनको लगा कि कोई शायद विदेश में कोई मंदिर में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा था और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं नहीं वो महाराष्ट्र में नाशिक करके जगह है। तो उनको विश्वास नहीं आया, उन्होंने नासिक के विषय में सुना हुआ था। बोले नासिक, वो नासिक का मंदिर है, इतना आलिशान लग रहा है वो नासिक का मंदिर, मैंने तो केवल नासिक का कालाराम मंदिर सुना था। तो मैंने कहा हाँ वही काले राम जी अब काले कृष्ण के रूप में आ गए हैं। तो उन्होंने वो खिचड़ी का डिस्क्रिप्शन अपने मेनू कार्ड में इंक्लूड किया था एज इट इज। होता है ना आजकल रेस्टोरेंट के जो मेनू कार्ड होते हैं उसमें वो हर एक आइटम उसका वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं ये आइटम के अंदर क्या होगा अंदाजन। तो उन्होंने उसी प्रकार से द बासमती राइस फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ देहरादून स्टीम्ड विद द येलो फ्रेश लेंटल्स फ्रॉम द हार्वेस्ट ऑफ पंजाब टेम्पर्ड इन द फ्रेश वेजीज एंड स्पाइस्ड विद ऑल ऑफ दैट। तो फिर उन्होंने वो पूरा उसको ब्रीफली लिख दिया। तो मेरे पास आए बोले कि मेरे को मेनू कार्ड में और भी आइटम्स इंक्लूड करने हैं क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन पढ़कर इतने लोग ऑर्डर करते हैं खिचड़ी वहां के लोकल, और वो इतनी खिचड़ी बिक रही है। अब है वही हमारा दाल चावल है दूधी भोपला दाल चावल, लेकिन पैकेजिंग, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, तो उन्होंने कहा कि और ऐसे कुछ आप आइटम्स डिस्क्राइब कर सकते हो जिसको मैं मेनू कार्ड में इंक्लूड कर सकूं। तो मैं मन में सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गीतामृत से किसी का बिजनेस चल रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, अब और कुछ नहीं तो अगर इसी से इनको इंस्पिरेशन मिलता है, तो मैंने कुछ आइटम्स और इंक्लूड करवाए उनके मेनू कार्ड में। वो इंडियन रेस्टोरेंट है, वहां पर बहुत फेमस होते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स, बहुत वो लोग इंडियन क्यूजीन के शौकीन हैं, तो इसलिए उनको इंडियन आइटम्स, लेकिन क्या इंडियन आइटम्स अगर हम सीधा लिख दें मिसल पाव तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसी चीज को एकदम आर्टिस्टिक तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो फिर उनको बहुत इंटरेस्ट आता है उसके। तो मैंने फिर उनको एक आइटम बताया कि फ्राइड पफ्ड अप ब्रेड। अभी वहां पे वो लोग ब्रेड खाते हैं हाँ, लेकिन फ्राइड पफ्ड अप ब्रेड। तो पहले मुझे पूछा ये क्या है प्रभु जी, मैंने कहा पूड़ी। अब आटे की रोटी या आटे की पूड़ी को वो लोग ब्रेड बोलते हैं, अब उसी को आप फ्राई कर दो तो पफ वो फूल जाती है, तो फ्राइड पफ्ड अप ब्रेड। तो बोला यहां ये बहुत अच्छा है डिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने उसको ऐड किया। फिर एक और डिस्क्रिप्शन मैंने इनको दिया, स्पाइस्ड पोटेटोज रैप्ड एंड फ्राइड इन सॉफ्ट वाइट डो, समोसे। खाने का मन कर रहा हूं। अच्छा ये आसान होगा, येलो फ्लैट राइस स्पाइस्ड विथ यू नो क्यूब्ड पोटेटोज डैश्ड विथ लेमन एंड फ्राइड पीनट्स, सुदामा के पोहे। तो मैं सोच रहा था इसके विषय में, मैं क्यों बता रहा हूं ये सब आपको, कि श्रील प्रभुपाद ने क्या किया वेस्ट में जब वो गए। ये सारे हमारे देसी आइटम्स हैं, पोहा पूड़ी समोसा खिचड़ी, ये सब देसी आइटम्स हैं। प्रभुपाद ने जो देसी हमारा कल्चर, उसको अमेरिका में जाकर फिरंगी तड़का दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको प्रस्तुत किया, अर्थात वही हमारी सब्जी देसी सब्जी उसको विदेशी तड़का। जैसे कि अभी मेरे इस विजिट में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसके अंदर मुझे डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं करना था, तो फिर भगवत गीता को किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा ना कि देसी सब्जी विदेशी तड़का, तो हमारा भगवत गीता ग्रंथ उसको अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे कि इट्स अ स्टोरी of the most professional warrior who took guidance from his chauffeur. Chauffeur किसको कहते हैं? किसी मालिक का driver होता है उसको chauffeur बोलते हैं. The most professional, it's a story of this professional warrior who took guidance from his own chauffeur to win the historical fratricidal war of his times. ऐसे किसी movie का plot लगता है, और है क्या हमारी भगवत गीता। तो श्रील प्रभुपाद ने वही किया, क्योंकि एक कारण यह था कि उस समय और अभी भी हम भारतीय जो हैं वो वही चीज यदि वहां से स्टैंप मारकर आती है, मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन चाइना नहीं, तो ये सारी चीजों का बहुत आकर्षण होता। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने यही जो हमारी देसी संस्कृति है उसे वहां जाकर, जैसे हमने कहा वो एक विदेशी तड़का, और फिर वही हमारी ही सब्जी को फिर से हमें ही खिलाया, परंतु देसी तरीके से। तब जाकर हमें पता चला, अच्छा ये मेरी सब्जी, ये तो दूधी लग रही है, लेकिन इसको जिस तरीके से अब श्रील प्रभुपाद ने इसको प्रस्तुत किया है, तो चाहे गीतामृत यहां पर हो रहा हो, जैसे चैतन्य चरण प्रभु से मैं मिला लंदन में, अभी जो आए थे, तो चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे कि वो जब अमेरिका गए थे लास्ट ईयर, तो एले लगुना बीच वहां पर एक टेम्पल है, तो वहां पर वो जिनके घर पर रुके थे, तो वो उनको बता रहे थे कि हम नासिक का जो गीतामृत है उसको रेगुलरली फॉलो करते। और फिर चैतन्य चरण प्रभु बोले, मैं खुद नासिक से हूं, मैं नासिक का बंदा हूं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर आप लोग बैठे हुए हो सकता है कि बहुत से आप लोग साल में ज्यादा से ज्यादा दूर कहां जाते होंगे, सापुतारा या फिर लेकिन जो आप लोग का अटेंडेंस है यहां का, वो ख्याति कहां कहां तक, वो नदी कहां कहां तक बह रही है उसके स्ट्रीम्स। तो आइए फिर से हम हमारी देसी खिचड़ी खाएं अभी। तो आगे हम जारी रखते हैं हमारा गीतामृत, उसकी चर्चा। यदि आपको याद है, 2 महीने पहले हमने ये 4th अध्याय का 16वां श्लोक लिया था। अब भगवान कर्म की व्याख्या कर रहे हैं, हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट है ये, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इतने वर्षों से ये कर्म के विषय में हम बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन हर समय ये कर्म का नियम, उसके नए नए प्रश्न उठते रहते हैं और नए नए तरीके से, और हम नए नए तरीके से इसको समझते रहते हैं। क्योंकि इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान ने ये कर्म का नियम कितना गहन है इसकी चर्चा की है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम्, बोद्धव्यम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम्, गहना कर्मणो गति। कर्मणो यपि बोद्धव्यम्, बोद्धव्यम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम्, गहना कर्मणो गति। कर्मणो यपि बोद्धव्यम्, बोद्धव्यम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम्, गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो पिछला श्लोक जिसके अंदर भगवान ने कर्म की व्याख्या प्रारंभ की थी, याद है पिछला श्लोक, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कवि, बड़े बड़े जो मुनिगण हैं, जो बुद्धिमान जो वर्ग के हैं, वो भी मोहिता, मोहग्रस्त हो जाते हैं इस कर्म और अकर्म को समझने में। तो ये पिछला श्लोक 16वां श्लोक जिसके अंदर 2 प्रकार के कर्म भगवान ने बताए, किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म और अकर्म के विषय में। और फिर भगवान ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं इनको समझने में। तो अब मानो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि कर्म क्या इतना उसका परिचय केवल एक शब्द में है, कि मैं यदि कुछ कह रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, युद्ध नहीं कर रहा वो भी कर्म है, युद्ध करूं वो भी कर्म है, तो यदि सब कुछ कर्म है तो उस कर्म छोटे से शब्द को कैसे समझा जाए। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान ने अब केवल 2 नहीं बल्कि 3 व्याख्याएं कर्म की है, कि 3 प्रकार के कर्म हैं। और ये 3 प्रकार के कर्म फिर भगवान कह रहे हैं कि कि ये गहना अत्यंत गहन है, इसको समझना। गहन का अर्थ है कठिन है, इसको समझना। कौन बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं कि ये बहुत गहन है, इसे समझना। और उसके साथ साथ भगवान ये भी बोल रहे हैं कि समझना आवश्यक है। कोई यदि कहे कि इतना गहन है, इतना कठिन है तो छोड़ो, नहीं छोड़ भी नहीं सकते। क्यों क्यों छोड़ नहीं सकते? क्योंकि ये कर्म और कर्म के नियम हम मनुष्यों के लिए ही लागू हैं, केवल हम मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं कर्म के नियम। यदि कोई शेर किसी हिरण को कत्लेआम कर खा के मार के खा जाता है तो उसके ऊपर कोई कर्म नहीं लगता, परंतु एक मनुष्य के ऊपर हर वक्त कर्म का नियम लागू होता है। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, तीन प्रकार के कर्म जो भगवान ने बताए हैं आज के श्लोक में। फिर ये एक शब्द भगवान ने आज के श्लोक में कितनी दफा इस्तेमाल किया है? तीन दफा। बोद्धव्यम कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तीन दफा ये शब्द, तो अगर 3 times इसको रिपीट किया है तो इसलिए हमको ये बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। फिर गहना शब्द की व्याख्या और गति शब्द की व्याख्या। तो जो 3 प्रकार के कर्म हैं, पुण्य कर्म, विकर्म का अर्थ है पाप कर्म, और अकर्म का अर्थ है कर्म फल से रहित जो कर्म होते हैं। अब देखिए, हमने इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं हमारे जो बेसिक गीता कोर्स है उसमें भी की है कि जब हम कोई भी प्रकार का कर्म करते हैं, अर्थात भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया है, नहीं कश्चित क्षणोपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर जैर्गुणेर, कि एक क्षण भी नहीं जाता जब मनुष्य बिना कर्म के रह पाए। तो अर्जुन सोच रहे थे कि कर्म के वजह से मैं फंस रहा हूं, मारूंगा मैं अपने ही रिश्तेदारों को, तो ऐसे गर्हित कर्म में मैं अपने आप को क्यों फंसाऊं? तो भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक में कह दिया कि अर्जुन, तुम यदि निठल्ले भी बैठे रहोगे, बिना युद्ध लड़े तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, वो भी एक कर्म है। कुछ न करना, कुछ करना, हर समय हमारा स्थूल शरीर और ये हमारा सूक्ष्म शरीर वो कार्यरत रहता है। यहां तक कि जब ये स्थूल शरीर रात को सोने जाता है तो सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर के विषय में सोचते हुए या अन्य इस शरीर से संबंधित जो जगहें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके विषय में सोचते हुए ये एक्टिव रहता। तो भगवान ने जो कह दिया, नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण भी नहीं जाता है जब हम कार्यरत नहीं रहते। तो फिर जब ये हमारे जिंदगी से इतने अटूट तरीके से जुड़ा हुआ है कर्म का नियम, तो क्यों ना हम इस कर्म के नियम को भली भांति जानने की कोशिश करें। और कौन समझा रहे हैं? साक्षात भगवान हमें समझा रहे हैं ये सारे कर्म के नियम हमारे लिए। और जो उनके ऊपर लागू भी नहीं, वो स्वयं भगवान आकर हमारे सामने कैसे कर्म करने चाहिए वो कर भी दिखाते। मतलब एक तो थियरी, उसके ऊपर से डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल भी। तो यहां पर जब भगवान कर्म इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उसका अर्थ है पुण्य कर्म, विकर्म का अर्थ है विपरीत कर्म, और अकर्म का अर्थ है वो कर्म जो कि अकर्म से, यदि कर्मफल रहित कर्म उसको कहा जाएगा तो अर्थात पुण्य कर्म जो है वो भी बांधने वाला है, नहीं तो फिर अकर्म ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता। तो पुण्य कर्म भी बांधने वाला है, जैसे कि पाप तो बांधने वाला है ही, पुण्य कर्म भी बांधता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में यदि कोई भी कर्म किसी को भौतिक संसार में रखे वो बाधित कर्म है। तो शुरुआत में हमारे एक टीम ने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है इस्कॉन के लॉज ऑफ कर्मा के ऊपर, तो इसमें संक्षिप्त रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि आज के श्लोक में भगवान क्या कहना चाहते हैं, और फिर हम इसके बाद पश्चात और गहराई में जाएंगे।
कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संसार की कोई भी घटना क्यों घटित होती है और कैसे, ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी किस रूप में, ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं? मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों है? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है, जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है पर ये नहीं। विश्व का कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ नहीं सकता, न ही कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है। कर्म सिद्धांत अभेद है जो ये आदेश देता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझ कर चले। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिससे हमें ही फायदा है, और हमें ये समझ कर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। अनेकों कर्म के सिद्धांत या तो गलत समझे गए या भुला दिए गए। कुछ लोग समझते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम विवश हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, उस पर विचार करने की या याद करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester.
प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं।
अब इस छोटे से वीडियो में एक प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से कर्म का नियम बताया गया, परंतु कर्म का नियम जो भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि वो इतना गहन है, ये जो गहना, इसका मतलब ये नहीं गहने पहनने के लिए कुछ गया है, ये गहना, गहना का अर्थ है जैसे यहां पर जो बहुत गहरा है और एक गुत्थी के समान है, डीप एंड इंट्रिकेट, मिस्टीरियस एंड पजलिंग। श्री प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक में एक कर्म के नियम के विषय में एक ऐसी बात कहे जो उपस्थित प्रभुपाद के शिष्य थे उस मॉर्निंग वॉक में उनसे, तो दूसरे अध्याय का ये श्लोक 40वां या 41वां श्लोक है, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो धर्म के पथ पर लगता है, भगवान की सेवा करता है, यदि स्वल्प मात्र भी उसकी सेवा वो कर लेता है, स्वल्प मात्र भी धर्म का आचरण वो करता है, तो महतो भयात, महान भय से वो अपने आप को बचाता है। तो महान भय की परिभाषा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, महत भय या महतो भय, उसका अर्थ प्रभुपाद देते हैं वन when the human soul glides into the animal species। अब हमको कई बार सुनने में लगता है तो उसमें इतना बड़ा भय क्या है। एक बार तो एक शिष्य ने प्रभुपाद को कह भी दिया, what is the harm in becoming a dog। हाँ, अभी वो अमेरिका इंग्लैंड वहां के जो कुत्ते हैं वो बड़ा आलिशान तरीके से जीवन जीते हैं, तो उनको पता नहीं था कि कुत्ते का जीवन भी एक कष्टदायी जीवन हो सकता है। तो उनको बहुत, वो ऐसे जानवरों से प्रेम करते, तो उन्होंने कह दिया कि व्हाट इज द हार्म इन बिकमिंग अ डॉग। तो प्रभुपाद सोचे कि अभी इसको क्या समझाऊं मैं। प्रभुपाद ने कह दिया, आई हैव माय ब्लेसिंग्स फॉर यू, ठीक है, तथास्तु, वही अगर तुम्हें बनना है तो। परंतु जब प्रभुपाद ने इस मॉर्निंग वॉक में कहा कि महतो भयात क्या है, कि जब एक मनुष्य अपने वास्तविक मनुष्य रूपी उद्देश्य को सिद्ध न करते हुए जब वो किसी पाप योनि में या पशुवत योनि में नीचे गिर जाता है, तो प्रभुपाद ने कहा कि वहां से पुनः वापस मनुष्य योनि तक आने के लिए उसको जो एवोल्यूशनरी साइकिल पास करनी होती है उसका विश्लेषण प्रभुपाद ने दिया। यदि मान लो कि कोई मछली की योनि में चला गया, मनुष्य से मछली की योनि में चला गया, तो प्रभुपाद ने कहा कि एवोल्यूशन का अर्थ ये नहीं है कि मछली का जीवन उसका पूरा होने के पश्चात जो उससे ऊंचा जीवन है, अगला जो ऊंची योनि है उससे अगली वो उसको प्राप्त हो जाएगी, नहीं, उस आत्मा को हर एक मछली का शरीर लेना पड़ेगा। जितनी सारी अलग अलग वैरायटी है मछलियों की, तो वो सारे वैरायटी से गुजरते हुए उस आत्मा को फिर नेक्स्ट हायर स्पीशीज उस आत्मा को मिलेगा। अगर वो नेक्स्ट हायर स्पीशीज पेड़ है मछली के पश्चात, तो हर एक पेड़ बनना पड़े, जितने सारे पेड़ हैं पूरी सृष्टि में, हर एक प्रकार के पेड़, और कई तो ऐसे पेड़ हैं अमेरिका में, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 5,000-5,000 साल से अभी तक खड़े हुए जी रहे हैं, एक आत्मा है। उस एक पेड़ रूपी शरीर में एक आत्मा कब से खड़ा हुआ है? 5000 वर्षों से खड़ा हुआ है। उसके पश्चात फिर नेक्स्ट हायर स्पीशी, यदि कोई छिपकली या कीड़ा मकोड़ा या पंछी या जानवर कोई भी ऐसी योनि में ऐसे एवोल्यूशनरी साइकिल में जाएगा, रूपा ने कहा ही हैज टू बिकम एवरी टाइप ऑफ एवरी स्पीशीज बिफोर ही वंस अगेन गेट्स द ह्यूमन फॉर्म। इसलिए कहा जाता है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य देह कितना दुर्लभ है अब इससे थोड़ा बहुत अंदाजा आप लोगों को आ रहा होगा। और जो प्रभुपाद ने कहा महतो भयात कि ये मनुष्य शरीर यदि हमारी दुर्लक्षता से केयरलेसली लिविंग से यदि ये मनुष्य शरीर हमसे छूट जाए तो पुनः ये मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त करना इतना कठिन हो जाता है। इसलिए आज के श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन न केवल ये कर्म के नियम इतने कड़े हैं इतने कठिन हैं बल्कि ये समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे कर्म के नियम नहीं पता थे इसलिए मुझे निचली योनि नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, भगवान ने हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट वो बुद्धि भी दी है जिसके द्वारा हम ये समझ सके, प्रश्न पूछ सकें। यदि किसी तोते को पकड़कर पिंजड़े में बंद किया जाता है तो प्रकृति ने तोते को ये फैसिलिटी नहीं दी पूछने की कि मुझे पिंजड़े में क्यों बंद किया, परंतु मनुष्य को जेल में बंद कर दो बिना मतलब। मनुष्य के अंदर ये फैसिलिटी है प्रकृति ने दी है कि वो प्रश्न पूछ सकता है कि मुझे बेमतलब इस जेल में क्यों बंद किया गया। तो उस बुद्धि को सही दिशा में लगाते हुए, तो इसलिए अब देखिए यहां पर जब भगवान ने कह दिया कि ये गहन विषय है, तो अगर गहन विषय है तो हमें उतनी ही जागरूकता से सुनना है, क्योंकि वैसे भी सरल विषय भी अक्सर हमारी जो कलयुगी बुद्धि है उसके पल्ले नहीं पड़ती। अब सोचो उसके ऊपर एक ऐसा श्लोक जिसके अंदर स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये कठिन है समझना, लेकिन फिर भी समझना है और कोई चारा नहीं है, नहीं तो फिर चार पैर में चारा ही खाना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंगली देखिए भगवान ने समझना है समझना है समझना है 3 बार बोल दिया, बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम। तो ये क्या है, बोधव्यम का अर्थ क्या है? हमारे आचार्यों ने बोधव्यम इस शब्द के अलग अलग उनकी टिप्पणियां दी है। सबसे पहला अर्थ है सीखना, फिर समझना, न केवल सीखना बल्कि सीखने के बाद उसे समझना, समझने के पश्चात सिखाना, यह भी हमारा उत्तरदायित्व है। और सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन में भी अपनाना, केवल सीख के समझ के दूसरों को बताना थे कर्म का नियम तुम्हारे ऊपर है। अच्छा अब देखिए कि जहां तक सीखने की बात आती है, हम लोग मनुष्य ये ऐसी एक विशेष योनि है कि जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारा सीखना प्रारंभ हो जाता है। यहां तक कि गर्भ विज्ञान के अनुसार गर्भ में भी हम सीखते हैं। यहां तक साइंटिफिक फाइंडिंग्स निकली हैं कि माता जब गर्भवती होती है वो क्या खाती है, वो क्या देखती है सुनती है, वो शिशु के ऊपर उसके इंप्रेशंस पड़ते हैं, तो वहां से वो सीखना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए एक मनुष्य वो कोई जलचर प्राणी नहीं है, लेकिन हम तैरना सीखते हैं, मछली जो है उसको कोई स्विमिंग लेसेंस नहीं लगाना पड़ता कि मछली अभी पैदा हुई है तो उसके मम्मी पापा उसको स्विमिंग लेसेंस के लिए भेज रहे हैं कि अभी तुमको जिंदगी भर स्विमिंग ही करना है तो अच्छी से स्विमिंग सीख के आओ। नहीं, पैदा होते ही मछली जो है वो एक ही कार्य करती रहती है, जिंदगी भर वो एक ही कार्य करती रहती, तैरना तैरना तैरना, और उसको कुछ नहीं आता है, वो और कुछ नहीं सीख सकती। देखिए प्राणी जो है अगर वो कुछ सीखे भी, जैसे कुत्ते हैंडशेक करना सीखते ना, न्यूज़पेपर लेके आ रहा है, वो भी मनुष्य सिखाता है उसको। अपने आप से पैदा होते ही कुत्ते एक दूसरे का हैंडशेक नहीं करते, अरे कैसा रहा, वो गली कैसी है। वो तोता या कुत्ता उसको भी अगर कुछ सिखाता है तो मनुष्य ही सिखाता है। और मनुष्य को तैरना कोई मछली आके नहीं सिखाती। तो हमारे अंदर ये जो सीखने की कला है, अब देखिए भाषा, ऐसी ऐसी भाषाएं हम बोल सकते हैं, ऐसी ऐसी भाषाएं हम समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे मैंने मनुष्य देखे हैं, मिले हैं कि जो सात सात आठ आठ भाषाएं फ्लुएंटली बोलते हैं, समझ में नहीं आता है कि उनकी मदर टंग क्या है। अब देखो भाषा के ऊपर, हाँ कई बार वो अलग बात होती है कि उसी भाषा के वजह से फिर बड़े बड़े युद्ध भी लड़े जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यही मनुष्य जब उस भाषा को सही तरीके से परिभाषित नहीं करता, जैसे एक बार एक दंपति, उनकी एनिवर्सरी थी, होता ना बहुत बड़ी बात होती है मैरिज एनिवर्सरी, तो मैरिज एनिवर्सरी सुबह से घर पर चर्चाएं चल रही थी, आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज ये करना है, आज मैरिज एनिवर्सरी, आज ये करना है। तो उनके काम वाली बाई थी, वो सुबह से सुन रही थी कि मालकिन और मालिक पर सुबह से एनिवर्सरी एनिवर्सरी कर। तो ये लोग निकल गए एनिवर्सरी मनाने होटल में, तो इनके मित्र ने घर पर फोन किया विश करने के लिए, तो ये जो काम वाली बाई थी इसने फोन उठाया, बोले साहब किधर है, बोले वो साहब और मालकिन गए हैं, आज उनका मैरिज अननेसेसरी है। तो भाषा अगर हम ठीक से नहीं सीखें, ऐसे स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट को पूछा जल में रहने वाले चार प्राणी बताओ, विद्यार्थी ने कहा मेंढक, बहुत अच्छा, और बाकी तीन, मेंढक के मम्मी पापा, मेंढक के भाई बहन, मेंढक के चौथा था, और एक्स्ट्रा बता देता हूं, आपने तो चार ही पूछे थे। तो जब हम सीखने समझाने सिखाने और अपनाने की बात करते हैं तो ये इन चारों का जो समन्वय है, इसका समन्वय, इसको भगवान कह रहे हैं बोद्धव्यम। कर्म के नियम को सीखना है, कर्म के नियम को समझना है, सिखाना है अपने उदाहरण से, और अर्थात अपनाना अपने जीवन में। तो इसलिए अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि एक तरफ तो भगवान ने आज के श्लोक में कह दिया कि ये बहुत गहन विषय है, तो हो सकता था कि हम इस तसल्ली से ये श्लोक पढ़ लेते कि भगवान शायद बोलेंगे ये बहुत गहन विषय है, तो अगला श्लोक लेते हैं। नहीं, भगवान ने साथ साथ क्या तीन बार बोल दिया, गहन विषय है लेकिन समझना, तुमको ही समझना, क्या है समझना, बोद्धव्य बोद्धव्य बोद्धव्य, तीन तीन बार ठोक पीट के बता रहे। तो इसलिए ये जो जोर भगवान ने दिया है कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप, ये नहीं कि चलो इसको थोड़ा आसान बना दे समझने के लिए, तो कर्म के नियम को थोड़ा आसान कर देते हम, हमारे अनुसार कर देते। हाँ नहीं, कर्म का नियम उतना ही गहन होगा और तुम उतने ही परिश्रम से समझोगे इसको, फिर भी ये गहन रहेगा। जितना भी बुद्धि लगा लो, चाहे हम 4 घंटे का 5 घंटे का इसके 25 पार्ट ले लें इस श्लोक के, लेकिन फिर भी ये विषय गहन रहेगा, क्योंकि ये कर्म है कैसा कि देखिए हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें, इतना इंट्रिकेट ये कर्म है कि हम कौन से समय कौन से परिवार में, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, कद क्या होगा, कितने मोटे कितने पतले, सर पे कितने बाल रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, कब निकलेंगे एक एक बाल, ये सारी चीजें इस सोचो कितना एक एक जीव के पीछे कितना बड़ा रिकॉर्ड है, कितना बड़ा डेटा होगा एक जीव के पीछे, सोचो कि जो मैसिव हार्ड ड्राइव, कितने वो आजकल तो टेराबाइट्स इत्यादि में होता है, तो कितना यमराज के पास सब कुछ उसका स्टॉक है, एवरी डिटेल, और सब अलग हैं, चाहे वो जुड़वा क्यों ना हो, उनके अंदर भी कर्म के अनुसार सब कुछ अलग है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसे हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए और फिर समाज के लिए इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम ये लॉज ऑफ कर्मा, कर्म के जो नियम हैं, इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ हम उन प्रश्नों को लेंगे, डाउट्स को लेंगे, संशय को लेंगे, और फिर देखते हैं कि इसका निवारण हमारे जो आचार्य ये कर्म के नियमों के बारे में बताए हैं, भगवान जो बताए हैं, क्या हमारे संशय इनसे दूर हो रहे हैं कि नहीं। तो मैंने उदाहरण लिया है कि ये कर्म का नियम बनाया क्यों है, हमारी परीक्षा के लिए, ये परीक्षा का पेपर है, फॉर अस टू बी टेस्टेड। तो यदि ये हमारी परीक्षा हेतु कर्म के नियम बताए गए हैं, तो फिर बहुत से डाउट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन पेपर एक क्लास का, अगर एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं तो उनका क्वेश्चन पेपर एक समान होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग एक ही परिवार में पैदा हुए, एक ही शहर में, एक ही समुदाय में सब मनुष्य हैं, परंतु सबका क्वेश्चन पेपर अलग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर्म के नियम के ऊपर ये आता है कि अगर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर एक क्यों नहीं सेट करते, है ना? सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर ही टेंशन देता है, उसके ऊपर अगर देखा जाए कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है। हमको याद है बचपन में क्वेश्चन पेपर आते ही टेंशन आता था, देखते थे कितने पन्ने का क्वेश्चन पेपर है, अगर 2-3 पन्ने का क्वेश्चन पेपर है तो सोचो आंसर शीट में कितने पन्ने होने चाहिए फिर। और उसके ऊपर टेंशन क्या आता था, जब कोई ऐसे विद्यार्थी वो सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांग रहे हैं, है ना, उनको देख के ज्यादा टेंशन आता था, सर सप्लीमेंट, सर सप्लीमेंट, ऐसे मांग रहे जैसे टॉयलेट पेपर मांग रहा, मतलब फिर फाइनली हमको टॉयलेट पेपर ही मांगना पड़ता है। तो दूसरे के क्वेश्चन पेपर और दूसरे का आंसर देख के ज्यादा टेंशन आता है। जैसे मान लो कि आज का डिनर सर्विंग हो रहा है वहां पर, अभी नहीं है, जब भी होगा, तो आज के डिनर में आप लोग सबको आपकी प्लेट में अलग अलग आइटम, तो आप शांति से खा पाओगे? हाँ, अभी इत्मीनान से शांति से हम लोग कहीं पर भी बैठ के अपना प्लेट लेके बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि चाहे एक घंटे बाद कोई जाएगा, चाहे डेढ़ घंटे बाद जाएगा, वही दो आइटम रहेंगे, खिचड़ी पापड़ या आलू मटर दाल चावल, ऐसे होता है ना मेनू, वही रहने वाले हैं, कोई फेर बदलाव। तो इसलिए देखो, जब एक समान सबके लिए मेनू है तो कितने शांति से हम लोग खा लेते हैं, कोई ईर्ष्या नहीं किसी के प्रति। कई बार तो अगर जो आइटम हमारे पसंद का नहीं है, अगर कोई डांगर की सब्जी बन दी है, अगर हमारी पसंद की नहीं है, तो हम लोग बहुत उदार हो जाते हैं, प्रभु जी आपको कम मिली लगता है, ऐसे कैसे, आप लीजिए, प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। लेकिन अगर सबके प्लेट में अलग अलग आइटम्स, तो सोचो क्या हालत होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब एक के भी प्लेट में अलग आइटम आ गया तो सोचो कि उसमें कितना डिस्टरबेंस हो जाता है। तो हम वो प्लेट लेके सबको चेक करते रहेंगे, इसके प्लेट में तीन आइटम, वो ये वाले, मेरे प्लेट में उसमें से एक भी नहीं है, अच्छा उसके प्लेट में पांच आइटम है, उसका एक भी नहीं है मेरे प्लेट में, वो भी देखता रहेगा आपका प्लेट, तो यहां पर कोई खाएगा नहीं, यहां पर तो कत्लेआम होता रहेगा। तो इसलिए ये कर्म के नियम में सबसे पहला प्रश्न, गहन प्रश्न लोगों का क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर सबका अलग क्यों है। अगर मैं भी उसी तिथि में जन्मा हूं, मैं भी उसी खानदान में जन्मा हूं, तो मुझे वो डिग्री क्यों नहीं मिलती जो मेरे भाई को मिली है, या मुझे वैसी सूरत क्यों नहीं मिली जो मेरे भाई को वैसी शक्ल सूरत मिली है। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस, व्हाई इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल टेस्ट, व्हाई गॉड पुट्स डिफरेंशियल टेस्ट, क्यों? क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं हमारे स्वयं के स्कूल के, क्योंकि हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने ही स्कूल में एडमिशन लेते हैं अपने ही चयन फ्री विल के द्वारा, इसलिए हमारे कर्मों के अनुसार स्पेसिफिक हमारे लिए वो पर्चा बनता है परीक्षा का। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हर समय इंटरेस्टिंग रहता है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो सबसे निकम्मे स्टूडेंट्स को आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके ठीक विपरीत व्हाई इजी क्वेश्चंस टू बैड स्टूडेंट्स एंड व्हाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू गुड स्टूडेंट्स, वही है व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, उसको नए तरीके से प्रस्तुत किया है। तो यदि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूं तो फिर मेरे परीक्षा के क्वेश्चंस अच्छे आसान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर फाइनली ये क्वेश्चन सबके जहन में आता है, ये जो क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, आप लोग बोलते हो कि पिछले जन्म का कोई कर्म का फल मुझे अभी मिल रहा है, तो इसी प्रकार से हो गया कि मैं इस साल ये क्लास 8th में या 9th में हूं, मैं उसकी पढ़ाई किए जा रहा हूं, और मुझे किसी दूसरे साल के परीक्षा का पेपर पूछा गया है, अरे मैं जिस साल में हूं उस साल का परीक्षा का पेपर पूछो ना। जैसे मेरे इसी विजिट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये इस टाइप का क्वेश्चन, व्हाई आई कांट रिमेंबर वट एवर पास्ट एक्टिविटीज आई हैव डन, व्हाई कृष्णा डजंट मेक मी रिमेंबर, इट विल बी सो इजी फॉर मी। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई, एक बार एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने ये प्रश्न पूछा भगवान से कि मुझे मेरे पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं आती है, अगर आप कहते हो कि ये सारे जो फल मुझे मिल रहे हैं सब पिछले जन्मों के मेरे कर्म के फल, याद दिलाओ, पता तो चले मेरे ही हैं, पता चला किसी और के दे दिया मेरे को। हाँ, तो भगवान यहां तथास्तु, अब उसको उसके पिछले जितने जन्म हुए जितनी योनियों में वो सब बखूबी याद आने लगे, तो वो हलवा खा रहा है, इस जन्म का हलवा खा रहा है और उसको वो वाला जन्म याद आ गया जब वो रिसाइकल्ड हलवा खाया करता था खेतों में जाके। वो हलवे को देख रहे, उसको याद आ रहा है, मतलब मैं क्या खा रहा हूँ, ये अभी वाला हलवा खा रहा हूँ या कौन सा हलवा खा रहा हूँ, ये भगवान ये क्या हो रहा है। तो भगवान बोले, तुम ही चाहते थे ना कि तुमको याद आना चाहिए जो जो तुमने पिछले जन्मों में क्या क्या खाया है, सुना है, देखा है, किया है, लो फिर लो खाओ, हलवा मुबारक हो। तो शुक्र मनाओ कि भगवान ने हमको भुलक्कड़ बनाया है। अगर हमारे हरेक योनि को अभी इस समय उसकी याददाश्त आ जाए तो हम लोग एक मिनट भी यहां बैठ नहीं पाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, मान लो हमको याद आ गया मैं छिपकली था, हाँ, तो हम लोग केवल दीवार की ओर देखते रहेंगे, छिपकली अच्छी दीवार, वो छिपकली के रूप में है, रेंगने के लिए अच्छी दीवार, यहां से वहां ऐसे। यहाँ लेक्चर चल रहा है बोद्धव्यम विकर्म अकर्मण बोद्धव्यम, हम लोग छिपकली घूम रहे हैं इधर उधर। तो इसलिए भगवान जो हमें जरूरी है वो याद दिलाते हैं हमारे उद्धार के लिए, कर्म के नियमों से बाहर निकलने के लिए। वॉट एवर इज एसेंशियल फॉर अस टू रिमेंबर, परमात्मा विद इन मेक्स अस रिमेंबर एंड फॉरगेट। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। दोनों ज्ञान और अपोहनम, रिमेंबरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, बोथ कृष्णा ही मेक श्योर इट हैपन्स बाय हिज पावर। तो अब ये जो प्रश्न है पिछले जन्म वाला, तो इसके विषय में भी जो आधुनिक ये विज्ञान है उन्होंने इसके ऊपर शोध निकाल दिया। जैसे कि हम लोग हमारे गीता कोर्स में कोट करते हैं, ये पास्ट लाइफ मेमोरीज जो कि एक बहुत सॉलिड प्रूफ है पुनर्जन्म का और कर्म के नियम का। तो ये एक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन है यूएस के, उन्होंने 2000 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं पास्ट लाइफ मेमोरीज के, और ये गीता के आधार पर नहीं है, उनके साइंटिफिक फाइंडिंग्स के आधार पर है ये। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की एक स्टूडेंट है बैंगलोर में, मिसेज सत्वंत पसरीचा, बहुत साल पहले मैं उनसे मिलने गया था बैंगलोर में। तो ये वहां की एसोसिएट प्रोफेसर है निमहैम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो हेल्थ एंड मेंटल साइंसेस, उनकी एसोसिएट प्रोफेसर है, एचओडी है साइकेट्री डिपार्टमेंट की। तो इन्होंने कितने केसेस, इन्होंने एक छोटी सी किताब दी थी, बहुत से केसेस जो इंडिया के अंदर रजिस्टर हुए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस उसके अंदर, तो ये तीन मुद्दे दिखते हैं पास्ट लाइफ मेमोरीज में। सबसे पहला मुद्दा कि अपने, अभी आप लोगों ने तो हो सकता है केवल बॉलीवुड में ये पिछले जन्म अगले जन्म के विषय में कोई ऐसे रोमांटिक कहानियां सुनी होंगी कि वो पिछले जन्म में ये था और फिर ये वो थी, फिर बाद में लोग अगले जन्म में यहां पर मिले अलग तरीके से। खाली वो रोमांटिक तरीके से नहीं, यहां पर ऐसे ऐसे केसेस इंडिया के अंदर, हम वो दीप कपाड़िया का एक केस सुनाते हैं हमारे गीता कोर्स में, ये केस वो बता रहे थे उन्होंने रजिस्टर किया है उसके अंदर। ये केस एक हुआ लखनऊ में, एक शिशु ने जन्म लिया, लड़के ने, उसका नाम था टिट्टू, और वो पैदा होते ही वो अपने आप को सुरेश वर्मा बोलने लगा कि मैं सुरेश वर्मा हूं। तो सुरेश वर्मा कौन है, और बोलने लगा मैं कानपुर से हूं, मेरा इलेक्ट्रिकल का शॉप है, सुरेश वर्मा हूं मैं, मेरी बीवी का नाम उमा वर्मा है, उमा वर्मा। तो इतना सा है, बीवी का नाम बोल रहा है, बोलता कानपुर का है। तो ये पूरी टीम आई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ये लेकर गया उन सबको कहां पर, कानपुर, और वो जो इलेक्ट्रिकल की दुकान है वर्मा इलेक्ट्रिकल्स, वर्मा इलेक्ट्रिकल दिखाया और वहां पे एक औरत वो गल्ले पे थी, उसकी पिछले जन्म की बीवी, किसकी? टिट्टू। टिट्टू की पिछले जन्म की बीवी, तो ये देख रही है कि ये लोग कौन है, छोटू सा या है, और ये उसको देखते ही बोलता है, मतलब पिछले जन्म में ये उसको प्रेम से, उमा इसका नाम था ना, तो उमराव जान बुलाया करता, तो बोला उमराव जान, ये देख रही है, ये एक तो इसको कैसे पता चला, तो वो एकदम सकपका गई, ये क्या चल रहा है, तो उसने सब ये दुकान बदल क्यों दी ऐसे, भैया कौन है ये, दुकान बदल क्यों दी, तो उसने कुछ चेंजेस किए थे दुकान के अंदर, ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचता था, तो उसने कुछ चेंजेस किए, तो ये चिल्लाने लगा दुकान बदल क्यों दी तूने, और फिर अपनी माँ से मिलने गया, उसकी माँ इतनी बूढ़ी, तो जाकर पैरों तक ही पहुंच पा रहा था, घुटनों तक पहुंच पा रहा था, उसको लगा कि ये मेरा पोता है, तो पोता पोता करके बुला रही है, अलग दिख रहा है यार, तो दिखाई भी नहीं दे रहा, अरे मैं बेटा हूं तुम्हारा, तो ऐसे करके उन्होंने ये जो केस है उसके विषय में बताया कि देर आर ऑल दीज 2000 केसेस, कि वो क्या याद रखते हैं, पीपल प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पास्ट लाइफ इवन लैंग्वेजेस, जैसे दीप कपाड़िया, ये गुजराती परिवार में सांताक्रूज में पैदा हुआ, लेकिन पिछले जन्म में ये राजस्थान का था, उदयपुर का, तो ये राजस्थानी बोलने लगा पैदा होते ही। एक और केस है नागपुर में, एक छोटी लड़की, वो पिछले जन्म में बंगाल की थी, तो बांग्ला बोल रही थी, पैदा होते ही वो बांग्ला बोल रही थी, तो ये ऐसे केसेस हैं। फिर सेकंड इनकी स्टडी में उन्हें समझ में आया कि न केवल उनको वो भाषा पिछले जन्म की, वो लोग, वो जगह याद आती है, बल्कि पिछले जन्म में किन किन चीजों से उनको डर लगता था, क्या बिहेवियर था पिछले जन्म में उनका, वो सब भी इस जन्म में। जैसे कि यही ये सुरेश वर्मा, पिछले जन्म में इसकी हत्या हुई थी, पॉइंट ब्लैंक इसको गनशॉट से मार दिया था, गोली से, और वो भी कनपट्टी पर। तो ये अब टिट्टू के रूप में जब पैदा हुआ लखनऊ में, तो बचपन से इसको वो दिवाली के पटाखों से डर लगता था, उस आवाज से डर लगता था, कोई भी ऐसे जो पटाखे भड़कते हैं उसकी आवाज से इसको डर लगता था, वो प्रकार का फोबिया इसको था। और न केवल ये, बल्कि जो तीसरी स्टडी उन्होंने देखी इसके अंदर, मैचिंग बर्थमार्क्स फ्रॉम पास्ट लाइफ, यहां तक सिमिलैरिटीज दिखती है, यही केस इस टिटू का, कि पिछले जन्म में इसको कनपट्टी पे गोली मारकर इसकी हत्या की गई थी, तो ये जब अब लखनऊ में जो पैदा हुआ अगले जन्म में, तो इसके पैदा होते ही इसके एक बर्थ मार्क यहां पर, और जैसे यहां पर जो एंट्री पॉइंट होता है गोली का, तो एंट्री पॉइंट छोटा होता है, एग्जिट पॉइंट बड़ा होता है, तो यहां से बड़ा घाव उसका मार्क, बर्थ मार्क, और यहां पर छोटा। सो मैचिंग बर्थ मार्क्स फ्रॉम पास्ट लाइफ, ये सारी चीजें। अब ये जो प्रश्न है कि ये अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों दिए जाते हैं, पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर मुझे क्यों दिया गया है, तो इसका उत्तर है डिलेड कार्मिक रिएक्शन। तो एक छोटा सा वीडियो है इसके संदर्भ में, डिलेड कार्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसे समझ में आएगा कि अभी किया हुआ कर्म कई बार इतना विलंबित हो जाता है कि न केवल एक जन्म भाई, कई जन्मों के बाद उसका कर्म प्राप्त होता है। We'll be right back. एक हमारे एयरफोर्स की एक स्टोरी थी, जो सच्ची घटना ये हुई कि वहां पर एक उत्तर भारत के किसी गांव का निवासी एयरफोर्स में वो भर्ती हुआ और वो छुट्टी से वापस अपने यूनिट ज्वाइन करने के लिए ट्रेन में था और कहीं जंगल में ट्रेन गुजरते हुए एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का और कुछ बोगीज डीरेल हो गए और इस बोगी जो डीरेल हुए बोगीज उसमें ये भी था, तो बहुत सी जाने गई उस एक्सीडेंट में लेकिन ये बच गया। तो पुलिस, रेलवे पुलिस और रेस्क्यू टीम आने के लिए समय था वहां पर, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं एक युक्ति निकालता हूं। तो इसने एक ऐसी डेड बॉडी ली जो उसके ही कद के समान और चेहरा उसका वो भी समझ में नहीं आने वाला, ऐसे अनरिकग्नाइजेबल फेस हो गया था एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसे बॉडी के अंदर अपना आई कार्ड डाल दिया। किसका? एयरफोर्स का आई कार्ड डाल दिया और ये फिर वहां से निकल लिया, अपने गांव वापस पहुंच गया। तभी ये जब पुलिस आई, रेस्क्यू टीम आई, उन्होंने सब आइडेंटिफाई करी बॉडीज, तो देखा ये बॉडी के अंदर ये एयरफोर्स के बंदे का आइडेंटिटी कार्ड है। तो इन्होंने इसके घर पे रिपोर्ट किया कि भाई सॉरी, आपका जो बेटा है, जो आपका पति है, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट के अंदर, और ये घर पे बैठा हुआ है। सब परिवार वालों को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे मृत्यु का समाचार आएगा, जाकर मेरी तथाकथित बॉडी कलेक्ट करना और फिर जो जो पैसे मिलेंगे सरकार से मेरे मृत्यु के पश्चात वो सब कलेक्ट करके लाना। तो उनके रगों में भी वही खून था, तो उन्होंने भी वो किया, लेकर आए सारा पैसा वैसा ले आए। अब ये यहां पर फर्स्ट क्लास पैसे लेकर सरकार के, और ये अपना जीवन सेटल किया इसने उस गांव के अंदर। 8 साल बीत गए, ये एकदम स्कॉट फ्री जिसको बोलते हैं वो जीवन जी रहा था। 8 साल पश्चात उसके गांव में ये सेंसेस होता ना, गिनती, उसकी गिनती हुई। तो फिर पुलिस में उन्होंने जब गिनती करी तो इसका नाम जो दर्ज हुआ था डेड, तो वो लोग जब आए तो उन्होंने देखा एयरफोर्स, उन्होंने देखा कि ये बंदे एयरफोर्स के कैलकुलेशन के अनुसार मरा हुआ है, लेकिन ये तो यहां पे जिंदा है हमारे गांव में। तो उन्होंने एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया, फिर 8 साल बाद उसकी फाइल्स खुली, एयरफोर्स पुलिस आई उस गांव में और उसको फिर रंगे हाथ पकड़ी। तो उसने एक एक्शन किया 8 साल पहले, उसका डिलेड रिएक्शन उसको मिला 8 साल पश्चात। आप आज रात को कुछ खाते हो, कल सुबह उसका कुछ रिएक्शन मिलता है ना। तो जैसे ही अगर कोई पेट पकड़े डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? वो कोई बोद्धव्यम कर्म के नियम को नहीं जानता है, सिंपल क्वेश्चन है कि भाई क्या खाया था। कोई अगर लंग कैंसर का मरीज जाता है तो डॉक्टर क्या पूछता है? कब से सिगरेट पीना शुरू किया? कब से? हो सकता है कि 10 साल 20 साल से पी रहा होगा वो, डॉक्टर 20 साल पहले जो उसने कार्य शुरू किया था उसके विषय में प्रश्न पूछ रहा। तो अगर इस जन्म में हमको हमारे पिछले, इस जन्म के पिछले कर्मों के विषय में पूछा जा सकता है और उसके जो फल हैं वो हमको दिखते हैं इसी जन्म में, चाहे वो इंस्टेंट हो चाहे वो डिलेड हो, तो फिर ये समझना इतना मुश्किल क्यों है? तो जब ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि भाई ये इसका जीवन इतना अच्छा क्यों चल रहा है, इसको तो मैं बचपन से जानता हूं, ये एक नंबर का चोर मक्कार, लूटता है लोगों को, और ये इतना ऐश्वर्यशाली कैसे, और मैं इतना ईमानदार, हर समय देखो ना ईमानदार मास्टर जी होते हैं, एक कुर्ता होता है बस, पजामा होता है, ईमानदार होते हैं, लेकिन सब उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं होता है। तो ये हमने उदाहरण, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट का बोलबाला है, अभी तो थोड़ा मातम मना रहे हैं सब लोग, तो स्कोरबोर्ड, अगर स्टेडियम में आप स्कोरबोर्ड देखो तो तीन चीजें स्कोरबोर्ड देखकर समझ में आएंगी आपको। पहली चीज क्या समझ में आएंगी कि अगर मान लो एक टीम का स्कोर है, स्कोरबोर्ड पे लिखा गया है स्कोर है 220, तो एक बंदा वो स्कोरबोर्ड को देखकर कहेगा कि जो लिखने वाला है ना वो पक्षपाती है, हा? उसको लगता है ये टीम ने घूस दिया है, 220 उनका रन बता रहा है ओपनिंग स्कोर, ओपनिंग स्कोर सीधा 220। अच्छा, दूसरा मत किसी का हो सकता है कि ये जो स्कोर है ये स्कोरबोर्ड पर बाय चांस आते हैं, इसलिए कई लोग इस स्कूल के हैं कि ये किसी के साथ जो भी होता है वो बाय चांस होता है। कोई अगर इंडिया में पैदा हुआ है, कोई अगर अमेरिका में पैदा हुआ है, कोई गोरा पैदा हुआ है, काला पैदा हुआ है, कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ है, जो भी, वो सब बाय चांस है। और कई लोग बोलते हैं कि पार्शियलिटी, जो भी कोई अगर वो परवरदिगार जो कर रहा है वो पार्शियल है, वो पक्षपाती है। परंतु तीसरा मत अगर कोई सामने रखे, स्कोर्स अपीयर ऑन द स्कोरबोर्ड बेस्ड ऑन द रन्स द रिस्पेक्टिव टीम टेक, तो कौन सा ज्यादा लॉजिकल लगता है आपको? इन तीनों में से स्कोरबोर्ड पर जो स्कोर है वो किसके कारण से हो सकता है? तीसरा कारण ना, कि जो टीम ने स्कोर किया, अर्थात टीम ने जो कर्म किए, और कर्म का फल स्कोरबोर्ड पर दिख रहा है। तो अगर ओपनिंग स्कोर 220 है तो समझ जाना चाहिए कि ये टेस्ट इनिंग्स चल रहा है, पिछले इनिंग्स में उन्होंने 220 बनाया था, अब सेकेंड इनिंग्स में 220 से, आजकल तो ये वाला इनिंग्स 3-day 5-day नहीं खेलते, परंतु अगर वो जो होता था ना टेस्ट इनिंग्स, तो उसके अंदर पिछले इनिंग्स का स्कोर कैरी फॉरवर्ड होता है अगले इनिंग में। अच्छा देखिए, ये जो क्रिकेट गेम है इसके अंदर कितना, जो आप आपकी परफॉर्मेंस दिखाओगे उसके अनुसार आपको उसके रिजल्ट स्कोर्स मिलेंगे, लेकिन ये क्रिकेटर्स के अंदर अगर आप उसको कहो, जिसको सुपरस्टिशन बोलते हैं या अंधविश्वास बोलते हैं या दैव, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि दैव है ना, महाराष्ट्र में बहुत बोलते हैं ना कि दैव खोटा झाला, तो ये क्रिकेट में कितने सारी ये माने हुए क्रिकेटर्स हैं जो सुपरस्टिशंस में इतना विश्वास रखते थे। सुपरस्टिशंस मतलब कि उनको लगता था कि अगर एक पर्टिकुलर रुमाल मैं अपने जेब में रखूंगा तो मैं सेंचुरी स्कोर करूंगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर है कि कर्म करते हुए भी इन लोगों के अंदर वो डेस्टिनी पर कुछ तो विश्वास है। डेस्टिनी मतलब समथिंग विच इज अननोन, दैट सोर्स विच इज अननोन।
They are in the news for various reasons, for the magic on the field and the glamour of it, and sometimes for the particular belief on luck they hold. Here are 11 superstitions of cricketers for a look at the way they chase the game of luck. Number 1. Virat Kohli. The celebrated young cricketer used to wear the same pair of lucky gloves in the belief that it helps him score high in every match. Number 2. Virendra Sehwag. Wearing a black jersey may be the last thing you would expect a numerologist to advise you, but that's exactly what happened with Sehwag, and the batsman took to doing that for going the number 44 jersey he used to wear, and purportedly this gave him luck. Number 3. Sourav Ganguly. Apart from the rings that he wore, which he thought as luck, Ganguly always made sure that he had his guru's photograph in the pocket when he was on field. Number 4. Yuvraj Singh. Yuvi has the number 12 on his jersey, which he considers to be his lucky number as he was born on the 12th day of the 12th month of the year. Number 5. Mahila Jayawardene. The Sri Lankan believes that his batting brings him luck. Anyone who has seen his innings would know he kisses the bat frequently. Number 6. Ravichandran Ashwin. During the 2011 World Cup, Ashwin used to carry his lucky bat, even though Ashwin played just 2 games in the tournament, He carried the bag for all the matches in which India won. Number 7, Steve Waugh. One of the greatest captains in cricketing history, Steve Waugh still not immune to superstition. He used to carry a red handkerchief his grandmother gave him to the matches. Such a lovely behavior, as some might say. Number 8, Zaheer Khan. The Indian paceman carried a yellow handkerchief for luck to every important match. Number 9, Rahul Dravid. You won't expect a wall to have things, but this one did, and for luck. He always followed the self-imposed rule of wearing the right thigh pad first. Number 10, Michael Clarke. Clarke's superstition may not be superstitious at all, since music is known to improve your confidence. He listens to loud music prior to getting out to bat, as he believes this is both luck including and also improves his concentration. Number 11, MS Dhoni. Like Yuvraj Singh, Dhoni also has his birth date on his jersey. Born on the 7th July, 7 is the number that the Indian captain relied for luck. These superstitions of cricketers may or may not act as mental crushers for them. Whatever be the case, for a game that relies as much on heart strategies as it does on gut feeling, these certainly are peculiar beliefs to hold. For more cricket updates, please subscribe our channel, Cricket Fan Club.
एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था मार्क टेलर. वो बहुत अजीबोगरीब हरकत करता था. पेविलियन से बैटिंग करने के लिए जब वो निकलेगा तो पेविलियन के जितने टॉयलेट्स होते थे वो टॉयलेट्स के कमोड, जो भांडा होता ना, उसका ढक्कन बंद करके आएगा. जब तक कि सारे ढक्कन बंद नहीं है वो पेविलियन से बाहर नहीं निकलता था बैटिंग करने के लिए. और अगर वो जीरो पे या कम रन पर आउट हो गया तो भागते हुए जाके देखेगा किसी ने कबोर्ड का वो ढक्कन ऊपर, अगर किसी ने कर दिया तो जाके चिल्लाता था क्यों ऊपर गया, उसकी वजह से आउट हो गया मैं. एक प्लेयर था, वो अपने ऊपर वाले जेब में वो एक रुमाल अजीब तरीके से फोल्ड करके रखता था, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ. और अगर कोई कैच भी आ रहा है उसको पकड़ना है तो पहले देखता था रुमाल बाहर है ना, फिर पकड़ता था. उसको लगता था वो रुमाल अगर बाहर आ रहा है तो कभी कैच ड्रॉप नहीं करेगा. ये सहवाग की बात कर रहे थे ये लोग. तो सहवाग, उसने एक मैच में डबल सेंचुरी मारी थी और फिर उसका कैच ड्रॉप हो गया. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट चल रहा था इंडिया का, तो कैच ड्रॉप हो गया. तो सहवाग ने उस समय कहा, गॉड इज इन फेवर ऑफ मी टुडे. भैया भगवान को कहां घसीट रहे हो कि किसी ने कैच ड्रॉप कर दिया. जैसे इस बार फाइनल में एक नो बॉल के वजह से आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप, जले पे नमक छिड़क रहे हो. तो मुद्दा यहां पर यह है कि एक तरफ है इनका अथक प्रयास, परंतु दूसरी तरफ इनके अंदर कहीं ना कहीं ये दैववाद है. तो हमारे अगले सिटिंग में हम कर्मवाद और दैववाद पर चर्चा करेंगे, परंतु आज के हमारे सत्र में ये जो अंतिम स्लाइड हम दिखाकर विराम देना चाहेंगे कि जैसे स्कोरबोर्ड और क्रिकेट का एग्जाम्पल हमने दिया, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इसको एक और तरीके से समझने के लिए उदाहरण है कि जैसे किसी सिनेमा की स्टोरी है, कोई प्लॉट है. तो मान लो कि कोई बंदा जो जानता नहीं है हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा को जानता नहीं है, और वो इंटरवेल के बाद प्रवेश किया उसने थिएटर में, पॉपकॉर्न लेके आया, बैठा है इंटरवेल के बाद, नेक्स्ट सीन चालू हुआ है, हीरो जो है शक्ति कपूर को मार रहा है, वही मार खाता है ज्यादा बहुत. हाँ, तो ये देख रहा है इसने, अब इंटरवेल से पिक्चर देखना शुरू करिए, शक्ति कपूर मार खा रहा है, तो इसका पहला निष्कर्ष क्या निकलता है इस बंदे का, ये जो डायरेक्टर है ही हेट शक्ति कपूर, इसलिए उसको मार खिलवा रहा है. हाँ, दूसरा निष्कर्ष उसका निकलता है कि हो सकता है कि ये इसका ये बंदे का बैड लक रहता है, मैं हर समय देखता हूं ये मार खाता रहता है, और बाकी लोग जो शुरू से पिक्चर देख रहे हैं वो लोग पॉपकॉर्न खाते खाते और मार साले को और दो घुसे मेरी तरफ से भी मार, इसको लगता है कि ये कितने निर्दयी लोग हैं, एक तो बेचारे को बेमतलब मारा जा रहा है, ऊपर से ये लोग भी बोल रहे हैं कि और मार उसको। तो क्योंकि उसने शुरुआत से वो सिनेमा नहीं देखा है, तो जब उसको कोई बताता है कि शक्ति कपूर हैड रेप द हीरोइन इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, जब उसको ये पता चलता है तो फिर वो बोलता है मेरे तरफ से भी और 10 मार इसको। तो होता क्या है कि जब हम किसी के जिंदगी की मूवी केवल कितना देख रहे हैं, इंटरवल के बाद वाली मूवी देख रहे हैं, तो हमको लगता है अरे क्यों इसको बेचारे को इतनी शक्ति से इसको मारा जा रहा है। लेकिन यमराज और उनके दूत और भगवान वो उसकी सारी मूवी जानते हैं, कहां से उसकी मूवी शुरुआत हुई है और ये कहां तक पहुंचा है। तो इसलिए भगवान ये जो बता रहे हैं कि कर्मणो यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोद्धव्यम कर्मणो गहना गति, कि अर्जुन मैं एक श्लोक में तुमको बता दूं कि ये कर्म का नियम जरूरी भी है और कठिन भी है, जरूरी है समझना और उसके साथ सबसे ज्यादा कठिन है इसको समझना, लेकिन इससे भागने से कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए आज जो हम चर्चा किए हैं वो केवल इस पॉइंट तक किए हैं कि ये जो डाउट्स आते हैं लोगों के मन में कर्म के नियम को लेकर, तो इसी को आगे हम हमारे नेक्स्ट सेटिंग में अगले बुधवार को लेंगे, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो कर्मवाद और दैववाद, इसके विषय में विशेष रूप से भारत में कि भाई सब दैव पे छोड़ देते हैं कि उनकी इच्छा होगी वही सब कुछ करा रहे हैं, वही करता धरता है, एक वो है और एक दूसरा स्कूल जो है मेरे अलावा और कोई करता नहीं है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको भगवद गीता के आधार पर सिद्धांत पर कैसे हम समझे, इसकी हम चर्चा करेंगे अगले बुधवार। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।
श्रीमान शिक्षाष्टम प्रभु की। हम प्रभु जी का स्वागत करना चाहेंगे नास्तिक धाम में, जैसे